फैसल मोहम्मद अली से सुने 8 अक्टूबर दिन गुरुवार का नमस्कार भारत। हूती विद्रोहियों ने जंगबंदी का संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव मान लिया है। यमन में युद्ध से साल भर में 5,000 लोगों की मौत। मुंबई में गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द, शिवसेना ने किया था विरोध। बिहार चुनाव में कितने प्रासंगिक है जेपी और लोहिया, सुनेंगे खास रिपोर्ट। और भूकंप के 10 साल बाद भी बदहाल है पाकिस्तान का बालाकोट। सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा है कि हूती विद्रोही संघर्ष समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि हूती विद्रोही और यमनी सरकार संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में वार्ता के लिए तैयार हो जाएंगे। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब समर्थित यमनी सरकार के बीच लड़ाई में कम से कम 5,000 लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हो गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी मदद देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था मेडिसिन्स ऑन फ्रंटियर यानी एमएसएफ ने अफगानिस्तान के कुंदूज में अपने अस्पताल पर हुए अमरीकी हवाई हमले की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग फिर से दोहराई है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एमएसएफ की अध्यक्ष को फोन करके व्यक्तिगत रूप से माफी भी मांगी है। एमएसएफ का कहना है कि कुंदूज के अस्पताल पर हुई बमबारी की जांच जिनेवा कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय आयोग को करनी चाहिए। संस्था का कहना है कि वह अमेरिका, नेटो या अफगानिस्तान की आंतरिक जांच पर भरोसा नहीं करती है। एमएसएफ के अस्पताल पर हुए हमले में कम से कम 22 लोग मारे गए थे। अमरीका में एमएसएफ के कार्यकारी निदेशक जेसन कॉस ने कहा, आज हम कहते हैं कि बहुत हो गया, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। कुंदूज में हमारे मरीज अपने बिस्तरों में जलकर मर गए, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सें और हमारे कर्मचारी अपना काम करते हुए मारे गए, हमारे सहकर्मियों को एक दूसरे का इलाज करना पड़ा। यह हमला सिर्फ हमारे अस्पताल पर नहीं हुआ बल्कि यह जिनेवा कन्वेंशनों पर हुआ है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होंडुरस के सबसे ताकतवर व्यापारियों में से एक येम रोलांडो रोजेंथाल पर अमेरिका में ड्रग तस्करी और काले धन को सफेद करने का मामला दर्ज किया गया है। रोलांडो 4 बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके हैं। उन्हें मंगलवार को मियामी एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ उनके 2 वरिष्ठ सहयोगियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग का कहना है कि इन तीनों लोगों ने ड्रग तस्करी के लिए अवैध धन हस्तांतरण किए हैं। ब्राजील की एक अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ ने पिछले साल अपने चुनाव प्रबंधन के दौरान कानून तोड़ा है। सरकार पर संघीय बजट की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी बैंकों से अवैध रूप से उधार लेने के आरोप लगे थे। विरोधी गुटों का कहना है कि अदालत के फैसले से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने का रास्ता साफ होता है। फीफा अध्यक्ष से ब्लेटर के वकीलों का कहना है कि उन्हें फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की आचार समिति के किसी फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आचार समिति ने ब्लेटर को अस्थायी तौर पर 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समिति किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले ब्लेटर को तर्क भी सुनेगी और सबूतों का गहन विश्लेषण करेगी। स्विट्जरलैंड के जांचकर्ताओं के ब्लेटर पर आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद आचार समिति ने यह फैसला लिया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा नमस्कार भारत। कार्यक्रम में शामिल होने वालों का स्वागत है। पांच हजार लोगों की जानें ले चुका और कम से कम 14 लाख लोगों को बेघर बार कर चुके यमन में जारी जंग के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने जंगबंदी का उसका प्रस्ताव मान लिया है। इस 7 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को ओमान के मस्कत में हुई एक बैठक में तैयार किया गया था। यमन में जहाँ हूती विद्रोहियों को शिया ईरान की मदद हासिल है, वहीं सरकार को सऊदी अरब समर्थित सेना का सहयोग। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रहे हैं दिलनवाज पाशा।
यमन में हूती विद्रोहियों ने देश में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर अमल करने का लिखित भरोसा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के प्रवक्ता स्टीफेन डुजारिक ने कहा है कि हूती विद्रोही बीते 6 महीनों के दौरान देश को बर्बाद करने वाले संघर्ष को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर तैयार हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में, जिसकी कॉपी बीबीसी के पास उपलब्ध है, हुती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के 7 सूत्रीय शांति वार्ता कार्यक्रम को स्वीकार करने की बात कही है। पिछले महीने हुती विद्रोहियों ने संघर्ष समाप्त करने का जबानी भरोसा दिया था। शांति समझौते के तहत संघर्ष विराम लागू होगा, शहरों से हथियारबंद लड़ाके वापस बुला लिए जाएंगे और सरकार राजधानी सना से चलेगी। यमन के राष्ट्रपति अब्दुरब्बू मंसूर हादी जोर देते रहे हैं कि किसी भी समझौते से पहले हूती विद्रोहियों को पिछले साल कब्जे में लिए गए इलाकों से पीछे हटना होगा। इसी बीच यमन के अपदस्थ राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के राजनीतिक दल का कहना है कि उसे देश में संघर्ष समाप्त करने का संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार है। यमन में हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, वहीं सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब गठबंधन हूतियों पर हवाई हमले कर रहा है। अरब गठबंधन राजधानी सना में अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी की सरकार चाहता है। संघर्ष में सऊदी अरब गठबंधन की संलिप्तता ने शांतिवार्ता को और जटिल बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक यमन में जारी संघर्ष में अब तक करीब 4,900 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 2,355 आम नागरिक हैं। संघर्ष के कारण यमन की 80% जनता को मदद की जरूरत है, जबकि 1,30,00,000 लोग खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहे हैं। करीब 14,00,000 लोगों को अपना घर बार भी छोड़ना पड़ा है।
हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जंग बंद हो पाएगा, इसके आसार बहुत कम हैं। रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। और अब कुछ खबरें भारत से। मुंबई में कल यानी 9 अक्टूबर को होने वाले पाकिस्तानी गायक गुलाम अली के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। गुलाम अली भारतीय गजल गायक जगजीत सिंह की याद में किए जा रहे एक प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे, लेकिन शिवसेना ने गुलाम अली के भारत में आने और प्रोग्राम में शामिल होने का विरोध किया, जिसके बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। मुंबई से अश्विन अघोर।
जाने माने गायक जगजीत सिंह के स्मृति में आयोजित एक संगीत समारोह को शिवसेना के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया है। मुंबई के माटुंगा स्थित षणमुखानंद हॉल में यह कार्यक्रम 9 अक्टूबर को होने वाला था। शिवसेना के विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली भी हिस्सा लेने वाले थे। इस विरोध को जायज ठहराते हुए शिवसेना नेताओं द्वारा यह दलील दी गई कि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से आए दिन शस्त्र संधि का उल्लंघन होता रहता है, जिसमें कई सारे भारतीय जवान मारे जाते हैं। इस घटना के विरोध में भारत सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि पाकिस्तान से आए हुए कलाकारों को हिंदुस्तान में सर आंखों पर बिठाया जाता है। मुंबई में कम से कम ये नहीं होगा। इस विरोध के चलते शिवसेना नेताओं द्वारा षणमुखानंद हॉल के व्यवस्थापन को एक चिट्ठी लिखकर कार्यक्रम रद्द करने की मांग की गई थी। इस चिट्ठी मिलने के बाद षणमुखानंद हॉल के व्यवस्थापन ने इस कार्यक्रम के आयोजकों को इसकी इतला दी, जिसके बाद आयोजक कल दोपहर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग के बाद कोई नतीजा न निकलने पर आयोजकों ने इस प्रोग्राम को रद्द करने की घोषणा की। इस बारे में हमने शिवसेना की इकाई चित्रपट सेना के जनरल सेक्रेटरी अक्षय बर्दापुरकर से बातचीत की। हमारे विरोध के बाद कल दोपहर कार्यक्रम के आयोजकों ने शिवसेना के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे साहब से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने यह प्रोग्राम रद्द करने का ऐलान किया है। ये थे अक्षय बर्दापुरकर, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि शिवसेना के विरोध के चलते 9 अक्टूबर को होने वाला यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।
ये थे अश्विन अघोर मुंबई से। और ब्रिटेन के होटल व्यापारी रंजीत सिंह पावर के परिवार ने पंजाब पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने जो शव उन्हें भेजा वो रंजीत सिंह का नहीं है। रंजीत सिंह की इस साल मुंबई में भारत यात्रा के दौरान हत्या हो गई थी। उनके परिजनों का कहना है कि पंजाब पुलिस की ओर से भेजी गई डीएनए रिपोर्ट रंजीत सिंह के लंदन स्थित दंत चिकित्सक के पास मौजूद डीएनए रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है। चंडीगढ़ से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
ब्रिटेन के होटल व्यापारी रंजीत सिंह पावर की लाश को लेकर परिवार और पंजाब पुलिस में असमंजस की स्थिति हो गई है। लंदन में रहने वाले रंजीत सिंह के परिवार का मानना है कि लंदन में हुए डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक यह डेड बॉडी रंजीत सिंह की नहीं है। गौरतलब है कि रंजीत सिंह की इसी वर्ष 8 मई को जब उन्हें श्री अमृतसर एयरपोर्ट पर आखिरी बार देखा गया और लगभग 1 महीने बाद 1 जून को उनकी डेड बॉडी अम्बाला के पास एक नहर में बरामद हुई, जिसकी पहचान उनके रिश्तेदारों ने की। पुलिस ने उस डेड बॉडी का डीएनए भी करवाया और डीएनए रिपोर्ट के साथ डेड बॉडी उनके परिवार वालों को सौंप दी। इसके बारे में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर एडीसीपी अमरीक सिंह पवार ने बीबीसी को जानकारी दी।
उनके परिवार के मेंबरों के उन्होंने क्या सैंपल लिए हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो हमारे पास उनके ब्रदर के अमरीक सिंह के सैंपल थे, हमने हमारी लैब जो चंडीगढ़ है उसके लिए भेजे थे, तो उन्होंने डॉक्टर ने कंडीशनली एक्सेप्ट किए थे कि हम ये ले लेते हैं लेकिन मदर का ही चलेगा ये डीएनए टेस्ट। तो हमने जो एम्बेसी को भी लिख के भेजा कि मदर को उसका हमें डीएनए टेस्ट मैच करवाना है, तो अभी वो पेंडिंग है। तो जो फैमिली वालों ने किसके साथ करवाया ये हमारी नॉलेज में।
पुलिस द्वारा भेजी गई डेड बॉडी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए रंजीत सिंह पावर की बेटी ईमा पावर ने बीबीसी हिंदी के साथ हुए ईमेल इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता के डेंटल रिकॉर्ड जो वहां पे पहले से मौजूद था और उनके अपने और उनके भाई के डीएनए के साथ मैच नहीं कर रहा, इसलिए वे मानते हैं कि डेड बॉडी उनके पिता की नहीं है। एडीसीपी पवार कहते हैं कि उन्होंने रंजीत सिंह की माता का डीएनए रिपोर्ट की मांग भी की थी, उसके साथ रंजीत सिंह के डीएनए रिपोर्ट ताकि मैच करवाया जा सके। अब ये लाश किसकी है जब तक पता नहीं चलता ये ब्रिटेन में रहेगी। ईमा कहती हैं कि अब ये बॉडी ब्रिटेन पुलिस की जिम्मेदारी है।
रविंदर सिंह रॉबिन सुना रहे थे रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने चुनाव भाषणों में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के नाम लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने भाषणों के दौरान इन नेताओं के नाम लेते रहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि जेपी और लोहिया आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हैं? क्या आज के बिहार की युवाओं पर इन नेताओं का नाम लेने से कोई फर्क पड़ता है? सुनिए जुबैर अहमद की खास रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव के लगभग सभी प्रमुख चेहरों में एक बात आम है, वो सभी या तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की पैदावार हैं या आपातकाल के विरोध के लिए जेल की सजा काटने वालों में से हैं। ये सभी नेता समाजवाद राम मनोहर लोहिया से प्रेरित हैं। शिवनंदन तिवारी भी जेपी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे, उन्होंने सक्रिय सियासत से अभी हाल में ही संन्यास ले लिया है। वो कहते हैं बिहार की सभी पार्टियों के युवा कार्यकर्ताओं से बातें करने के बाद उन्हें पता चला कि लोहिया और जेपी के बारे में उन्हें कोई खास जानकारी नहीं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में इनके सिद्धांतों को तलाश करना वक्त की बर्बादी है।
राजनीति में जेपी आंदोलन के वसूल की जो तलाश कर रहे हैं
जी,
वो उसी तरह का तलाश है जैसे भूसा के ढेर में कोई सुई की तलाश करे।
राजेंद्र तिवारी बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके विचार में 1974 का जेपी आंदोलन कई साल पुरानी घटना है, अब इसका महत्व नहीं।
नहीं, दरअसल अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है 77 के समय से, और चीजें भी बदल चुकी हैं, क्योंकि राजनीति तो उस समय पर होती है, जो समय जो काल परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से चीजें तय होती हैं। और जेपी खुद कांग्रेस से आए थे, और जहां तक मोदी जी की बात है सुशील मोदी की, तो सुशील मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे, संघ के थे, और जब सारी पार्टियां एक में विलय हुआ जेपी के नेतृत्व में तो उसमें शामिल हुए थे, और जब पार्टियां अलग हुई तो वो अलग हो गए थे।
लेकिन अगर लोहिया का समाजवाद और जेपी की संपूर्ण क्रांति पुरानी बातें हो चुकी हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इनके नामों का माला आज भी क्यों जपा जा रहा है? शिवनंदन तिवारी कहते हैं
इस नाम के पीछे एक नैतिक ताकत है, और उसका जो है सहारा लेने के लिए, चूंकि आज उनकी राजनीति में, इन सब लोगों की राजनीति में कहीं वो नैतिक मूल्य का बोध नहीं है उनके राजनीति में, वो उस तरह की एक ढंग से कहिए मोरालिटी नहीं है, तो उसका एक सपोर्ट लेके जो अपना खालीपन है को आप कह सकते हैं कि उसको थोड़ा भरने की कोशिश होती है।
बिहार में युवा पीढ़ी के वोटरों की संख्या बहुत है जिसे जेपी आंदोलन से कोई लगाव नहीं। आज की पीढ़ी में 18 से 29 साल के वोटरों की संख्या 2 करोड़ के लगभग है। दिलचस्प बात यह है कि इनका नेतृत्व जिन नेताओं के पास है वो जेपी आंदोलन की पैदावार हैं। वो समाजवाद और संपूर्ण क्रांति के उसूलों को जरूर भूल चुके होंगे, उस ऐतिहासिक समय को भूल नहीं सके हैं। उनका आंदोलन करने का तरीका भी वही और अंदाज भी वही। शिवनंदन तिवारी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टियों में अहम नेता रह चुके हैं और दोनों के करीबी साथी भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि जेपी आंदोलन भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक मुहिम थी, लोहिया परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन उनके अनुसार ये दोनों नेता अब उल्टा काम करते हैं। राजेंद्र तिवारी उनसे सहमत हैं।
किसी भी पार्टी में इस समय जो उनके आदर्श लोग रहे, समाजवादियों के आदर्श राम मनोहर लोहिया रहे, और राम मनोहर लोहिया जो कुछ कहते रहे उसके ठीक उल्टा आज के सो कॉल्ड समाजवादी करते, जेपी जो कहते रहे हैं, जेपी जिसके लिए लड़ते रहे उसके ठीक उल्टा समाजवादी करते हैं। जाति के खिलाफ थे लोहिया जी, जाति की राजनीति। परिवारवाद के खिलाफ थे लोहिया जी, जिंदगी भर लड़ते रहे परिवारवाद से, परिवारवाद की राजनीति होती है।
बिहार में कम से कम इस विधानसभा चुनाव तक जेपी आंदोलन से जुड़े नेता अहम भूमिका निभाएंगे। इस चुनाव के प्रमुख चेहरे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी 1976 के जेपी आंदोलन से जुड़े रह चुके हैं। अगर आप आपातकाल के दौर का जिक्र करें तो इन नेताओं के साथ साथ रामविलास पासवान का नाम भी जोड़ा जा सकता है, जिसने भी ये कहा है कि सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, वो बिहार के संदर्भ में बिल्कुल 16 आने सही है। नीतीश, लालू और मोदी एक साथ इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े थे। नीतीश और लालू दोस्त से दुश्मन बने और अब दुश्मन से एक बार फिर से दोस्त। सतही तौर पर एनडीए गठजोड़ और महागठबंधन दो विपरीत विचारधारा के खेमों में बटे हैं। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन को सेक्युलर ताकतों का एक गठजोड़ माना जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के गठजोड़ को सांप्रदायिक फोर्सेस का एक जमोड़ा। लेकिन शिवनंदन तिवारी कहते हैं कि गहराई में जाने से समझ में आता है कि विचारधारा उसूलों पर आधारित राजनीति और मौलिक सिद्धांतों के बजाय गठजोड़ बनाने के पीछे केवल सत्ता हासिल करने का प्रयास है, यही एक अकेला मकसद है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
दुनिया की बड़ी खबरें बीबीसी के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर बीबीसी दुनिया, ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, यह है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं।
उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
और अब देखते हैं कि आज के अखबार क्या कर रहे हैं। दिलनवाज पाशा
जी, कल भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में दादरी कांड की पृष्ठभूमि में एकता में अनेकता में एकता, विविधता, सहनशीलता की बातें कहीं, और इसी को अलग अलग अखबारों ने सुर्खी बनाया। हिंदुस्तान लिखता है दादरी कांड पर राष्ट्रपति चिंतित, तो जनसत्ता का कहता है गंवाए नहीं जा सकते एकता के बुनियादी मूल्य, और यही खबर बाकी अखबारों के पहले पन्ने पर भी है। जिक्र दादरी से ही जुड़ी एक और खबर का, दादरी में मारे गए अखलाक के परिजनों ने, उनके भाइयों ने तय किया है कि वो गांव में ही रहेंगे, और न भारत टाइम्स लिखता है रुक गए इखलाक के परिवार के कदम। कल वहां एनटीपीसी में जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच बैठक हुई थी, और इखलाक के भाइयों ने कहा था कि वो चाहते हैं कि भरोसा दोबारा कायम किया जाए और इसलिए वो गांव में रहेंगे। और अब जिक्र द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर का, जिसके मुताबिक पंजाब में एक कीट ने कपास की खेती पर बुरा असर डाला है, लगभग 2/3 कपास के खेत बर्बाद हो गए हैं, और इसी के सिलसिले में 15 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। चिंताजनक खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर है। इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर के उस सिपाही के बारे में, उस पुलिस कर्मी के बारे में शीर्षक दिया है जो वहाँ पर खुफिया अभियानों में अहम भूमिका निभाता था, इनकी कल चरमपंथियों से एक मुठभेड़ में मौत हो गई थी। अखबार लिखता है मिलिटेंट किल्स को ब्रेन बिहाइंड एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया गेट के पास भारत सरकार एक युद्ध स्मारक बनाएगी, इस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये खबर भी अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर है। वहीं राष्ट्रीय एनजीटी जो ट्रिब्यूनल है उसने फैसला लिया है दिल्ली में भारी वाहनों का जो प्रवेश होगा महंगा होगा, उन्हें अधिक टैक्स देना पड़ेगा, ये खबर भी अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर है। और अब जिक्र एक खास खबर का, जिसके मुताबिक इंदौर से गुड़गांव एक व्यक्ति का लीवर लाया गया, और ये काम जो है 2 घंटे में पूरा कर लिया गया। एक ब्रेन डेड मरीज के अंग जो है दूसरे मरीजों में प्रत्यारोपित किए गए, और इसी पर खबर पर नई दुनिया ने लिखा है 2 घंटे में इंदौर से गुड़गांव पहुंचा लीवर, ये एक चमत्कारी कार्रवाई कल हुई है।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए दिलनवाज पाशा। और अब बीबीसी की कुछ खास रिपोर्टें। पाकिस्तान में 10 साल पहले आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर को जोरदार भूकंप आया था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट शहर में लगभग 90% मकान नष्ट हो गए थे। बालाकोट में तब लगभग 40,000 घर थे। ये शहर भूकंप की फॉल्ट लाइन पर स्थित है। सरकार ने शहर से 30 किलोमीटर दूर एक नया शहर बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन 10 साल बाद भी न नया शहर आबाद हुआ, न ही पुराने बालाकोट की तस्वीर बदली। बालाकोट से बीबीसी उर्दू संवाददाता अजीजुल्ला खान की रिपोर्ट।
ये बालाकोट शहर है जिसे फॉल्ट लाइन पर होने की वजह से यहाँ आबाद नहीं होना था। 10 साल में लोगों ने यहाँ मकान भी बनाए और कारोबारी जिंदगी भी जारी है। लोग यहाँ सख्त परेशान हैं। 5,000 से ज्यादा अस्थायी शेल्टर्स भूकंप से प्रभावित लोगों का मुस्तकिल ठिकाना बन चुके हैं। बेगम जान अपनी एक अपाहिज पोती समेत 3 बच्चों के साथ इस अस्थायी मकान में रहती हैं।
4 बंदे यहाँ से असल तो मुझ मुश्किल आते हैं। असी 12 देना 15 देना कुछ भी ना, बस कोई दरवाजे से अंदर कोई चीज आन दे स्थिति।
बेगम जान का कहना था कि हमारे घर में तो कोई मर्द नहीं है कि कतारों में खड़े होकर दरखास्तें दे और फिर अपने नाम से कोई प्लाट या इमदाद हासिल कर सके। बालाकोट के हर घर में इसी से मिलती जुलती कहानियां हैं। यूनियन कौंसिल गरलाट में गुलशन बीबी भी एक बेवा हैं। उनका एक बेटा और बहू जलजले में हलाक हो गए। अब एक बेटा और बहू के अलावा एक बेटी और एक पोता उनके पास हैं।
असन त्रया घर छटल असा को एक मिले इस जगह किराए ते के दिए अपना खर्चा कीते हो जिसो को तो असन खाली करो असन खाली करना है।
गुलशन बीबी ने बताया कि उन्हें एक शेल्टर मिला था जो उन्होंने यहाँ किसी और की जमीन पर लगाया है, लेकिन उन्हें कोई प्लाट नहीं मिला जिस पर वो अपना मकान बना सकें। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें बाकी फिक्र नहीं है, लेकिन उन्हें अपने इस पोते की फिक्र ज्यादा है जिसके माँ बाप मर चुके हैं। उनके मरने के बाद पोते का क्या होगा?
अंदर बैठी देना कोई खर्चा सारा मैं आप की तरह मांग दांग के लोगों को पैसे कहन के मैं पढ़ लो हो जाए अंदर।
गुलशन बीबी ने बताया कि यहाँ लोग कहते हैं कि उन्हें सब कुछ दिया जाएगा, न जाने ये सब कुछ कब मिलेगा। जलजले के बाद बालाकोट का मुआशी और मुआशरती निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। एक गैर सरकारी तंजीम के तर्जुमान मजहर अली ने बताया कि इस जलजले में बालाकोट के कोई 18,000 अफराद हलाक हो गए थे और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए थे जिनमें से अब बेशतर माजूर हैं।
तो यहाँ पे जो मरी नस्ल जवान हुई है वो एक फ्रस्ट्रेशन के माहौल में मरी नस्ल जवान हो रही है, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। देखें पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है यहाँ पे कोई तालीम का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब इकोनॉमिकल जो मेरी कंडीशन हमारी है वो खत्म हो चुकी है, तो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है। लोग प्रेफर करते हैं यहाँ से हम शिफ्ट कर जाएं।
इस शहर में भूकंप से बचाव की तामीरात तो दूर की बात, यहाँ 10 सालों में कोई तरक्याती काम भी नहीं हो सके। हुकूमती इदारों की नाअहली या कुछ और वजह है। नए बालाकोट शहर के मंसूबे पर अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी बात आगे नहीं बढ़ी। पुराने बालाकोट शहर में भूकंप से तबाही के आसार अब भी नुमाया हैं। न पुराना शहर अपना और न ही नया बालाकोट बन सका। अजीजुल्ला खान, बीबीसी न्यूज, बालाकोट।
जानकारों का कहना है कि ब्रिटेन में रह रहे बेऔलाद एशियाई लोगों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने शुक्राणुओं और अंडाणुओं का दान कर सके, लेकिन वैसे एशियाई डोनर उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता शीतल परमार की रिपोर्ट।
हाय नीलम। हाय शीतल, कम इन प्लीज, हैव अ सीट।
लेस्टर फर्टिलिटी सेंटर में स्त्री रोग विशेषज्ञ नीलम पोद्दार का कहना है कि ब्रिटेन में एशियाई डोनर्स की कमी है, इस वजह से कृत्रिम गर्भाधान के जरिए माँ बाप बनने की हसरत रखने वाले एशियाई जोड़ों को बच्चों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लेस्टर फर्टिलिटी सेंटर ने घोषणा की है कि उनके पास अंडाणुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनमें से अधिकतर गोरी महिलाओं के अंडाणु हैं और एशियाई डोनर महिलाओं की भारी कमी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ नीलम पोद्दार ऐसे सैकड़ों मरीजों को देख चुकी हैं जो कुदरती तौर पर मां नहीं बन सकती हैं। उनके पास हर रंग और नस्ल के मरीज आते हैं, लेकिन असल समस्या एशियाई जोड़ों को पेश आ रही है। वे कहती हैं,
I see couples who have been through the system for 10 years.
मैं ऐसे जोड़ों को देख रही हूँ जो बीते 10 साल से माँ बाप बनना चाह रहे हैं। वो इसी उम्मीद में यहाँ से वहाँ जा रहे हैं कि किसी दिन तो बात बनेगी। विज्ञान ने यदि और तरक्की की तो हम कोई और विकल्प सुझाए बिना उनकी मदद कर सकेंगे।
डॉक्टर नीलम पोद्दार कहती हैं कि कुछ जोड़े तो औलाद पाने के लिए हर तरीका अपना चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। वे अब ऐसे जोड़ों को एक और तरीका आजमाने के लिए कह रही हैं, हालांकि उन्हें पता है कि इसके साथ विवाद जुड़ा हुआ है।
Maybe Asian couples should consider undergoing treatment with Caucasian.
एशियाई जोड़े सफेद चमड़ी वाले डोनर्स की मदद से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चा तो आपको ही मिलने वाला है, जिसके साथ आपका मजबूत रिश्ता होगा और आपका अपना परिवार होगा।
डॉक्टर नीलम पोद्दार ये भी मानती हैं कि एशियाई जोड़ों को एशियाई डोनर्स के इंतजार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन लंदन के हार्ली स्ट्रीट फर्टिलिटी क्लिनिक में डॉक्टर गीता वेंकट इससे सहमत नहीं हैं।
माय रिजर्वेशन अबाउट ऑफरिंग देम कॉकेशियन डोनर इज बिकॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड।
सफ़ेद चमड़ी वाले डोनर्स पर मेरी आपत्ति ये है कि एशियाई परिवारों में जो बच्चे पहले से हैं उनके साथ ये नया बच्चा उतने अच्छे तरीके से घुल मिल नहीं पाएगा, लेकिन यदि कोई जोड़ा सफ़ेद चमड़ी वाले डोनर्स के लिए तैयार है तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है, ख़ास तौर पर तब जब उस परिवार में अलग अलग नस्ल के लोग पहले से ही मौजूद हैं।
डैनी और उनकी पत्नी बीते 6 साल से एक बच्चे की आस लगाए हुए हैं। क्या उन्हें गैर एशियाई डोनर मंजूर है? इस सवाल पर वे कहती हैं,
At this stage we're at where we would want to use the donor sperm. However, if that was the only option that we had available,
हम उस मुकाम पर हैं जहां हमें एक बच्चे की जरूरत है। यदि यही एक विकल्प है तो हमें मंजूर है।
जानकारों का कहना है कि मौजूदा हालत में अधिक से अधिक एशियाई डोनर्स का आगे आना जरूरी है, लेकिन इस बारे में जागरूकता की जरूरत है। ब्रिटेन के डॉक्टर्स भी इसे बड़ी चुनौती मानते हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास और अब सुनते हैं खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। कटक T20 में प्रशंसकों के गुस्से का शिकार हुई भारतीय टीम आज कोलकाता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बेताब होगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज भारतीय टीम पहले ही 0-2 से गंवा चुकी है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की टीम आगामी वनडे सीरीज से पहले आखिरी T20 से जीत का स्वाद चखना चाहेगी। दूसरे मैच में भारतीय कप्तान MS धोनी के अजिंक्य रहाणे की जगह अंबाती रायडू को उतारने के फैसले की कड़ी आलोचना हुई थी। ऐसे में आखिरी मैच में भारतीय टीम बदलाव के साथ उतर सकती है। धर्मशाला T20 में ओस की भूमिका अहम रही थी, जहां भारत 7 विकेट से हार गया था। कोलकाता में इसकी संभावना पर बात कर रहे हैं पूर्व क्रिकेटर विजय दहिया।
पहले मैच के लिए तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि ड्यू पड़ी थी और इम्पोर्टेंट थी। दूसरे मैच में तो भारतीय टीम ने रन ही इतने नहीं बनाए कि ड्यू फैक्टर पिक्चर में आ सकता और उसकी वजह से किसी चीज पे फर्क पड़ता। तो दूसरे मैच में हमने बहुत ही खराब बल्लेबाजी की। सिर्फ आप 100 रन का भी आंकड़ा अगर पार नहीं करेंगे तो फिर किसी भी विकेट पे किसी भी टीम के खिलाफ आपको दिक्कतें तो आएंगी।
धर्मशाला में हुए पहले T20 मैच में भारतीय टीम 199 रन के लक्ष्य का बचाव नहीं कर पाई थी, जबकि दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाज 92 रन ही जोड़ पाए थे। इसके बावजूद भारतीय स्पिनर्स 4 विकेट चटकाने में कामयाब रहे थे। स्पिनर्स के रोल पर विजय दहिया कहते हैं,
अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर हमारा नहीं है जो लगातार खेल रहा हो, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि टीम की सोच क्या है और कितना ज्यादा विश्वास आपको अपने फास्ट बॉलर्स पे है। भारतीय टीम जब भी घर पे खेलती है ताकत हमेशा स्पिन रही है, तो फास्ट बॉलरों के बारे में ज्यादा बात करने के लिए है नहीं। हाँ, अभी आने वाले जो मैचेस हैं उसमें भी मुझे लगता है कि जब वनडे खेलेंगे ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा नहीं है, जिन ग्राउंडों पे होने वहाँ पर स्पिनर्स जरूर पिक्चर में आएंगे, तो स्पिनर्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
और वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे T20 मैच की मेजबानी करने वाले ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों की मददगार होगी। कटक T20 में दर्शकों द्वारा मचाए गए उपद्रव के बाद तीसरे T20 के लिए ईडन गार्डन स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोमवार को हुए दूसरे T20 मैच की दूसरी पारी के दौरान बाराबती स्टेडियम में दर्शकों ने मैदान में पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया था, जिसे मैच को 2 बार रोकना पड़ा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
अब सुनते हैं विश्व समाचार एक बार फिर।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हुती विद्रोही संघर्ष समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी मदद देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था मेडिसिन सान फ्रंटियर यानी MSF ने अफगानिस्तान के कुंदूज में अपने अस्पताल पर हुए अमरीकी हवाई हमले की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच की मांग दोहराई है। ब्राजील की एक अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ ने पिछले साल अपने चुनाव प्रबंधन के दौरान कानून तोड़ा है। BBC समाचार।
स्टूडियो मैनेजर थे अजीत सारथी। एक घंटे के बाद फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।